Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Gambhiranandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Shvetashvatara Upanishad, Prathama Adhyaya, Sambandha Bhashya. So, Chandogya Upanishad ne एकम एव अद्वितीयम कहा, वो एक ही है और अद्वितीय है, एक एक ही है और अद्वितीय है। ठीक इस विषय में कल जो है तीन भेद के विषय में चर्चा कर रहे थे, स्वगत भेद, सजातीय भेद और विजातीय भेद। ये तीनों भेदों से रहित है, इसलिए जो वो एक ही है और अद्वितीय है, इसी प्रकार इसलिए कहा। और फिर जो है न ही नाना अस्ति एकम एव सत, न ही नाना अस्ति किंचन, हा? फिर वो तो नाना नहीं है, बहुत प्रकार के नहीं है, एक ही है। अब फिर जो एक ही तो नाना प्रकार से दिखाई दे रहा है, वो एक ही नाना प्रकार से दिखाई दे रहा है, फिर नाना क्यों नहीं है? जब एक ही जब नाना प्रकार है, फिर नाना प्रकार क्यों नहीं है? एक ही भी कहना भी है और फिर जो दूसरी जगह में नाना प्रकार से हो जाते हैं, अनेक प्रकार से वो एक ही अनेक प्रकार से हो जाते हैं, ये भी कहना है। आखिर में जो है वो नाना नहीं है, फिर काट देना है। मैं अभी ये सब शास्त्र पढ़ने के बाद, डिटेल अंदर जाने के बाद ये सब ज्ञान होता है कि ये स्वरूपेण ऐसा है, ये वो जो भी सब हम सुनते हैं लगाते हैं, लेकिन केवल एक वाक्य को लेकर के यदि चलोगे, एक दो वाक्य को सुन करके जो लोग जो उठा देते हैं, दूसरे कोई ग्रंथ में उठा देते हैं, ये शास्त्र में एक ही लिखा, हाँ वो एक ही परमात्मा अनेक रूप में हो गए, जब फिर ये जो वाक्य फिर आ जाएगा कि फिर जो ने नाना अस्ति किंचन, फिर वो अनेक नहीं है, तो ये सब जो वाक्य जो इतना विरोध हो जाता है, तो बहुत बढ़िया ढंग से आपको विचार करना पड़ेगा। ब्रह्मसूत्र में ये सारे वाक्यों का विचार है, मंत्र वाक्यों का समझ के लेना पड़ेगा। अच्छा दूसरा है कि हम तो समझ रहे हैं क्योंकि सुनते सुनते के दिल में बैठ गया कि वो परमात्मा एक ही है, लेकिन इस प्रकार दिखाई देता है, लेकिन ये कितना हमारे दिल को छुआ है ये देखना पड़े। इसलिए जो है तुलसीदास जी ने जो कहा कि निर्गुण ब्रह्म को समझना आसानी है, लेकिन सगुण ब्रह्म को समझना इतना आसानी नहीं है। हम वही परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा एक अलग तत्व है, निर्गुण निराकार है, इसी प्रकार समझना होता है, लेकिन ये जो सगुण साकार जो ये जीव है, ये जीव परमात्मा है, स्वरूप है, अपने आप को कि परमात्मा। वेदांत यदि इस तत्व को यदि तत्व का यदि अध्ययन कर रहे हैं तो अपने आप को एक परमात्मा स्वरूप मानना कितना मुश्किल पड़ जाता है। तो जो है वो नाना नहीं है, वो एक ही है, ये वाक्य है, लेकिन ये वाक्य सब दूसरे का कुछ सिद्ध करना नहीं है ना। जो भी इतर वाक्य है, इतर वस्तु है, जब उसको उसके विषय में हम अध्ययन करते हैं आसानी हो जाता है, ज्ञेय वस्तु का अध्ययन करना आसानी हो जाता है। जैसे कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, जितने सारे इंजीनियरिंग जो भी कुछ है, वो कितने भी टफ हो लेकिन अध्ययन करना हो जाता है, आसानी हो जाता है। हाँ वो अपने से भिन्न वस्तु है, उसका अध्ययन चाहे वो कितने भी टफ हो, कितने सूक्ष्म विज्ञान हो, लेकिन अध्ययन हो जाता है। लेकिन ये क्या है, अपने विषय में अध्ययन, जब वो स्व अध्ययन होता है। अब इस स्व अध्ययन करने के लिए जो चाहिए, क्या चाहिए, हाँ दक्षता, क्षमता, ये जो चाहिए। और उसको अध्ययन करने क्या क्षमता चाहिए कि कोई दसवीं पास हुआ तो अवश्य ही कि वो इंटर में जो पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन कर सकता है, ये पक्की बात है। कोई यदि बीए पास किया तो एमए में जो पाठ्यक्रम है उसको अध्ययन कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है, लेकिन ये जो स्वस्य अध्ययनम जो है, अपना जो अध्ययन करना, आत्मा विषय में अध्ययन करने जो क्षमता चाहिए, ये क्षमता है अपने विषय है। और ये क्या है, ये तो अपने विषय बोल के आप उतर जाएंगे अध्ययन करने के लिए, लेकिन कोई क्षमता नहीं होती, इसीलिए गाड़ी फंस जाती है। आई बात समझ में? अब यहां क्या क्षमता चाहिए? अरे क्या क्या, कई क्रोध अभिमान अहंकार राग द्वेष मत्सर जितने सारे अपने अंदर पड़ा हुआ है उसको पहले निकालो। और वहां तो क्या है कि सेवेंथ पास हुआ तो एट्थ में भर्ती, दसवीं पास हुआ तो इंटर में भर्ती, और यहां ऐसा नहीं हो रहा है। यहां की क्षमता जो है अपने आप में अच्छा, और इतनी ये एक गजब बात है वो कि अपने आप में अपने अंदर से भरा हुआ है। अब वो बोलेगा कि मेरे अंदर में नहीं है तो बात साफ है, ठीक है तेरा अंदर नहीं है तो दर्शन कर सकता है, बात तुरंत ही पता आती है। और ये बोलेगा कौन? बोलेगा कौन कि तुम्हारे अंदर में राग है द्वेष, ये बोलेगा कौन है? आए यदि कोई सामने वाला बोल देता है तो अच्छा नहीं लगता है, अभिमान फिर पुष्टि होती है कि तू ऐसा नहीं बोलता, तेरा अंदर नहीं है क्या? ये इतनी यहां फंस जाती बात जो है, इसलिए जो है अब अपने अंदर में क्या क्या है वो स्वयं ही बताना पड़ेगा। अब स्वयं को मालूम भी नहीं पड़ता है कि स्वयं अंदर में क्या क्या है, दुनिया भर पड़ा हुआ है, कोई बता दे तो जमता ही नहीं है। अच्छा अब सामने वालों को कैसे ज्ञान भी होगा कि तेरे अंदर में ऐसा है? कोई ऐसे विरल पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, गुरु होते हैं, उनको मालूम पड़ता है कि आपके अंदर में क्या है, और वो तो पहुंचे हुए व्यक्ति है। कितनी यहां मुसीबत खड़ी हो जाती है, वो पहुंचे हुए हैं और हम उनके पास जाते हैं उसे पढ़ने के लिए, और हम पहले से एक अभिमानी जीव है। अब वो कुछ दिखाते हैं तो हमको जमता ही नहीं है, और उनको हम पहचानते भी नहीं है, सारे एकदम पूरा समस्या ही समस्या आया। आसानी अपने स्वरूप को जानना है कि ये अपना ही स्वरूप है, एक ये विषय वस्तु है, लेकिन जब सोचने जाते हैं इतनी समस्या खड़ी हो जाती है। अच्छा और वो जो चाहते हैं कि वो तो एक विरल पुरुष है और वो चाहते हैं कि इसका किसी पर कल्याण हो जाए, अब वो जब दम लगाना शुरू करते हैं हम तो उसमें परेशान हो जाते हैं, और हमारे अंदर पहले से राग द्वेष पड़ा हुआ है, हम उसके विषय में और उनके संबंध जो भी कुछ कार्य सब लेकर के ये इसलिए ऐसा कराते होंगे, इसलिए ऐसा सारे चीज हम उल्टा पुल्टा फिर सोचना शुरू कर देते हैं, बस फिर संबंध टूट जाता है। अब फिर जो है बहुत जानते हैं कि ये इसी प्रकार सोच रहा है, फिर वो धीरे धीरे सहन करते करते फिर बुलाते हैं उसको, फिर नहीं बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो ऐसा समझ रहा है तेरा अंदर में गुण है। ऐसा होते 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 कोई कोई फिर जो है उस गुरु का अनुसरण करते हैं, फिर प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इतने सारे विषय वस्तु हैं यहाँ, इसलिए जमता नहीं है। हर व्यक्ति नहीं चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहते हैं कि हमारे अंदर में ये चीजें हैं और मैं बाहर निकालूं। जैसे तुम उसको समझाने लगोगे ये ऐसा है, नहीं नहीं ये ऐसा नहीं समझ, मैं जो है मेरा ढंग ऐसा है, बस वो अपना सफाई देना, हाँ सब चीज उसकी ही है। शब्द में तो शास्त्र में सब कुछ आया, मैं तो एक सामान्य भाषा में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन शास्त्र का शब्द तो यही तो चार पांच क्लेश अंदर में है। समस्या यहां जो है, ये समस्या ऐसी उत्पन्न हो जाती है, और जो महापुरुष उसको जो साफ देख रहा है उसके लिए कुछ नहीं लग रहा है, अरे कैसे तो साफ ये क्यों नहीं समझ रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कुछ नहीं पर साफ है, क्योंकि उसका तो शीशा साफ है, उसकी जो शीशा है आंदर में शीशा है साफ है, उस शीशा के सामने जो भी सामने व्यक्ति आ जाता है उसके ऊपर साफ दिखाई देता है। लेकिन सामने वाला जो जो नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं समझ रहा है, इतनी छोटी सी वस्तु क्यों नहीं समझ रहा है, इतना बड़ी समस्या क्यों खड़ा कर देता है, क्यों भागता है, क्यों ऐसा, अरे वो विषय में सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाएगा। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में मैं आगे जो है ये जो समस्या जो है बड़ी समस्या देखने में कुछ नहीं है, लेकिन समस्या समस्या है। कहा कि एकधा एव अनुद्रष्टव्यम, फिर वो जो है एक प्रकार ही हाँ देखना चाहिए, एक रूप में ही देखना चाहिए, अनुद्रष्टव्यम देखना चाहिए, पाठ मिला है ना। मायां तु प्रकृतिं विद्यात, उस प्रकृति को ही तुम माया समझो, हाँ, जाने विद्यात, उस प्रकृति को ही तुम माया जाने, ठीक है, श्वेत सूत्र उपनिषद है, माया सृजते विश्वम एतत, माई माई सृजते विश्वम एतत, वो जो माई जो है, यानी जो माई के है, ठीक है, वो परमात्मा है, माया से विशिष्ट है, बोध एतत विश्वम सृजते, इस विश्व को जो है रचना करते हैं। अब बताइएगा वो एक ही है, वो कैसे रचना करते हैं? हाँ, ऐसा इस विषय में उलझते उलझते समाधान लेते 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 थक जाएंगे आप। इंद्र माया भी ही, इंद्र माया भी पुरुरूप ईयते, हाँ, वो जो परमात्मा है, इंद्र है, स्वामी है, सबके स्वामी है, माया के द्वारा, हाँ, ये पुरुरूप ईयते, हाँ, ये जो है पुरु का अर्थ जो है अधिक है, पुरु का अर्थ अधिक है, अधिक रूप को जो है प्राप्त करते हैं माया के द्वारा, ऐसा अर्थ है, ठीक है, लेकिन जो है आप अनेक रूप को जो है निर्माण करते हैं, ऐसा अर्थ कीजिएगा। इत्यादि भी ही वाक्य ही, तो इत्यादि वाक्यों से ना ये सब जो है जो ऊपर से लेकर के यहां तक जो है इसका जो मिथ्या प्रपंच से मिथ्यात्व, हाँ, प्रपंच का जो मिथ्यात्व जो है ये सब दिखाया सारे इन वाक्यों से। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। वो जो है वो परमात्मा अजह अजन्मा है, और जो है अजन अज अपिसन अजन्मा होते हुए भी अव्यय है, अविनाशी है, ये भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय का श्लोक है। और वो जो है देखिए कि अज भी है, अज का अर्थ अजन्मा है, हाँ, और अव्यय अर्थ अविनाशी है, हतो ये फिर जो है भूतानाम ईश्वर अपिसन, आप भूतों का ईश्वर है, हाँ? अब प्राणी यदि उत्पन्न नहीं होंगे तो फिर उनका ईश्वर कैसे होंगे? यदि ईश्वर हुए भूतों का तो फिर अजन्मा कैसे रहे, अविनाशी आदि, हाँ? ये सब जो है जितने सब आप सोचते रहिएगा, लगाते रहिएगा लगाते रहिएगा, कुछ भी उलझन होगा लेकिन सोचिएगा, ये सोचने से ही ये समय जो सार्थक है। जीव भी अजन्मा है, जीव भी अजन्मा है, अविनाशी, जीवात्मा भी क्यों नहीं है? यदि समुद्र यदि नमक है, नमकपन समुद्र में है, और लोटे समुद्र से उठाकर लोटे में पानी लाएंगे, वो भी तो नमकपन तो रहेगा ही है। ये जीवात्मा भी, ये भी अजन्मा है, हाँ, ये भी अविनाशी है, ठीक है, लेकिन वो जो भूता नाम ईश्वर संज कहा, ये भूता नाम ईश्वर न, ये प्राणियों का ये ईश्वर नहीं है, ये भी अविनाशी है, हाँ, ये भी अजन्मा है, लेकिन प्राणियों का जो ईश्वर है, संपूर्ण प्राणियों को चलाने वाला, अनुशासन करने वाला जो ईश्वर होता है, वो ईश्वरीय नहीं है, इतने फर्क है, ठीक। और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्ममायया। अब जो है वो अपने माया शक्ति से आत्ममायया संभवामी, संभवामी है ना, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, इसलिए अहम कर ले जाना है कि आपने माया के द्वारा, हाँ, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, प्रकृति के अपने प्रकृति के अधिष्ठान आश्रय लेकर, अपने प्रकृति का ही आश्रय लेकर अपने माया शक्ति के द्वारा अहम संभवामी, मैं जो उत्पन्न होता हूँ, उस ईश्वर ने कहा मैं उत्पन्न होता। आप बताइएगा इसमें एक कैसे एक जटिलता आ रही है कि माया शब्द भी यूज किया और जो प्रकृति शब्द भी यूज किया, हाँ, अब माया माया शक्ति से और प्रकृति के आश्रय लेकर आप ये दोनों को कैसे घटाओ, कैसे घटाओगे? हाँ ठीक है, ये जो है देखिए है तो सब इधर बात आ जाती है। प्रकृति जो है, प्रकृति दो प्रकार के होती है, एक माया है और अविद्या है, वही प्रकृति है, माया प्रकृति, अविद्या प्रकृति। तो आप तो फिर तो जानते हैं कि माया तो इस पर की शक्ति है, लेकिन ये प्रकृति का ही एक भेद समझिएगा, माया प्रकृति और अविद्या प्रकृति है। तो ये क्या होता है कि जब माया से विशिष्ट जिसे निर्गुण निराकार जो चैतन्य है, अब ये जिससे माया से विशिष्ट होता है यानी समष्टि सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो चैतन्य है मुझे ईश्वर है, अब माया से विशिष्ट होकर के ईश्वर बनता है। लेकिन जब ये वही ईश्वर जो है, जब माईक ईश्वर जब फिर वो सगुण रूप में जब लीला करने के लिए अवतरण करना पड़ता है तो प्रकृति के आश्रय लेकर के फिर अवतरण करना पड़ता है। तो प्रकृति के यदि उस ईश्वर को यदि सगुण रूप लेना हो तो प्रकृति के आश्रय लेना पड़ेगा, यानी प्रकृति स्वभाव तो है, प्रकृति यहाँ पारिभाषिक शब्द है और बाकी तो शाब्दिक अर्थ में तो स्वभाव है, वो स्वभाव से सगुण बन जाते हैं, ऐसे भी अर्थ करो चलेगा। वो जो जो है इसलिए तो कहा प्रकृति जो है एक का ही दो प्रकार, एक माया प्रकृति और एक जो अविद्या प्रकृति। ठीक है, अब माया प्रकृति के सहारा से वो जो ईश्वर बने और जो है अविद्या प्रकृति जो है इससे वो जीव बने, जीव जो है सगुण साकार है और ईश्वर निर्गुण निराकार नहीं साकार है, और निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य है, निर्गुण निराकार शुद्ध चैतन्य है और सगुण निराकार ईश्वर है। ठीक है, हाँ निराकार है लेकिन सगुण है, हाँ। और जो है सगुण साकार जो है जीव है, जीव से लेकर के ब्रह्मा तक, ब्रह्मा विष्णु शिव ये सब सगुण साकार है, लेकिन इस साकार में भी ये भेद है, सब साकार में हाँ। यदि आप यदि उनको ब्रह्मा के स्थान में जैसे लेते हैं तो फिर निराकार है लेकिन सगुण है, सगुण है लेकिन निराकार है। यदि ना सगुण साकार है, यदि ब्रह्मा के स्थान में जैसे लेते हैं हम, और ईश्वर जो है निराकार है लेकिन सगुण है। तो वो जो ईश्वर जो है, जो सगुण निराकार जो ईश्वर है, जब सगुण साकार जब लेते हैं तो प्रकृति के आश्रय लेकर के सगुण साकार होते हैं। इस विषय में हमारे उड़िया बाबा जी इनके इस श्लोक में बहुत बढ़िया से वर्णन किए हैं, इस विषय में बहुत अच्छा लगता है। अब कभी उठाना तो उनके कहां से आ गई यही फिर रामायण फिर जो है पूरा सुन करके सीता अब कहां से आ गई वो हमारे अंदर में इसलिए आ गई क्या अतुल जी, फिर अनादिकाल से हमारे अंदर से है इसलिए आ गई है देखो ये बहुत अच्छा समाधान दिए है, क्योंकि कहां से आ गई सोचोगे तो उसमें उलझ जाओगे, अभी निकलना कैसे ये सोचो, कहां से आया फिर वो उस उलझन में मत पड़ो। हाँ बस यही है, लग गया कैसे ये मत सोचो। यदि टाइम है आपके पास, समय है, ऐसा तर्क वितर्क करने के यदि समय है, समय निकाल के रखे तो लगाइएगा। बहुत ऐसे होते हैं विद्वान होते हैं, बहुत तार्किक बुद्धि होती है और दुनिया भर जो है निकालते रहते हैं, ऐसा वैसा ऐसा खंडन मंडन होता रहता है। अब उसके पीछे नहीं पड़ना है, यदि आपको भजन करना है, शांति प्राप्त करना है, उसमें स्थिर होना है, उनको ऐसे खंडन मंडन करने से शांति होती है। यदि आपको खंडन मंडन से उलझन हो रहा है तो ऐसा मत कीजिएगा, यदि उससे यदि शांति मिल रही है आपको करने से तो कीजिएगा। वो बात साफ है। हाँ, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्। फिर गीता का तृतीय त्रयोदश अध्याय का वो जो है अविभक्त है होते हुए, ठीक है, यानी आकाश के समान अविभक्त है होते हुए, भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम्, और सभी भूतों में विभक्त हुए होता हुआ सा स्थित है। हाँ, आप बताइए। हाँ, अभी देखिएगा। हाँ, ये आकाश है, ठीक है। हाँ, ये आकाश है ना, इधर आकाश है, और मैं उस आकाश के सामने इसको मैंने इसे रख दिया मैंने। हाँ, आकाश यहाँ था ही, मैंने इसको इसे रख दिया। अब मैं जो ये रखा हूं, अब इस आकाश इसको रखने से पहले मैं आकाश ऐसे ऐसे इसको किया और इसको ऐसे ऐसे किया, फिर इसको रखा, ऐसा किया।